नमस्कार। आज हमारे सामने है पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक बहुत ही गहरा और मुझे लगता है प्रेरक उद्बोधन।
जी।
शीर्षक है, भगवान के साथ साझेदारी घाटे का सौदा नहीं।
मतलब सीधा सा है कि ईश्वर के काम में, आप कह सकते हैं परमार्थ में, अपना कुछ भी लगाना वो कभी बेकार नहीं जाता।
हाँ बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव इसे सिर्फ एक विचार की तरह नहीं बताते, वो अपने पूरे जीवन के अनुभव से, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से इसे समझाते हैं।
अच्छा।
हाँ, वो बताते हैं कि कैसे अपना समय, अपना श्रम, अपनी बुद्धि, अपनी भावनाएं और यहाँ तक कि धन भी जब हम परमार्थ के लिए लगाते हैं तो वो असल में हमारे ही पास कई गुना होकर लौटता है।
ये सुनने पे तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। ये दिव्य साझेदारी पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये काम कैसे करती है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है इसकी?
देखिए, इसकी जड़ें असल में पूज्य गुरुदेव को उनके गुरु से मिले मार्गदर्शन में है।
ओ, उनके गुरु से? उसके बाद ही तो वो फसल काट पाता है ना?
हाँ सही बात है। तो इसका मतलब हमें भी पहले कुछ बोना होगा, पर इस ईश्वरीय खेत में, मतलब ये जो समाज है, दुनिया है, इसमें क्या बोना है?
पूज्य गुरुदेव मुख्य रूप से चार चीजों को बोने की बात करते हैं। पहला, शरीर।
शरीर कैसे?
मतलब अपना समय, अपनी शारीरिक मेहनत, उसे समाज की सेवा में लगाना। दूसरा, बुद्धि।
बुद्धि मतलब अपनी अकल।
हाँ, अपनी सोचने समझने की शक्ति, उसे सिर्फ अपने निजी कामों या छोटे मोटे अहंकार में ना लगाकर ईश्वर के काम, अच्छे ज्ञान और समाज के हित के चिंतन में लगाना।
अच्छा, ये दो हुए और बाकी दो कौन से?
तीसरा है भावनाएं।
भावनाएं जैसे प्यार, दया।
हाँ, अपने प्रेम, अपनी संवेदना को सिर्फ अपने परिवार या कुछ लोगों तक ही सीमित ना रखना, उसे फैलाना पूरी सृष्टि तक, सभी प्राणियों तक। और चौथा है धन।
धन पैसा।
जी, अपनी कमाई का, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, उसे अच्छे कामों में, ईश्वर के निर्धारित कार्यों में लगाना।
शरीर, बुद्धि, भावना, धन, ये चारों तो हमारे जीवन के, आप कह सकते हैं, आधार स्तंभ जैसे हैं। पर क्या सच में इन्हें परमार्थ में लगाने से कुछ लौट कर आता है, मतलब व्यवहारिक रूप से?
पूज्य गुरुदेव खुद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वो बताते थे कि उन्होंने 60 वर्षों तक लगातार इन चारों को परमार्थ में बोया।
60 साल?
हाँ, और नतीजा, वे बताते थे कि 75 की उम्र में भी उनका शरीर एकदम स्वस्थ, युवाओं जैसा फुर्तीला रहा। जबकि उनकी स्कूली शिक्षा बहुत साधारण थी, लेकिन उन्हें ऐसी प्रखर बुद्धि मिली कि वेद, उपनिषद, पुराण जैसे गूढ़ ग्रंथों पर उन्होंने विशाल साहित्य रच दिया।
अरे वाह, ये तो सच में अद्भुत है, साधारण शिक्षा और इतना गहरा ज्ञान।
बिल्कुल। और उनकी भावनाएं, वो इतनी व्यापक थीं कि कहते हैं हर किसी के दुख में वो सच में दुखी होते थे और सुख में सुखी। इसी वजह से उन्हें करोड़ों लोगों का अगाध स्नेह मिला, सहयोग मिला।
और धन का क्या हुआ जो उन्होंने लगाया?
रही बात धन की, तो जो भी थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति मिली या जो कमाया, सब उन्होंने गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज जैसे विराट संस्थानों को खड़ा करने में लगा दिया। लेकिन फिर भी ईश्वर के कामों के लिए संसाधन कभी कम नहीं पड़े, हमेशा व्यवस्था बनती गई। तो ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, ये उनका जिया हुआ सत्य था।
गुरुदेव एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि ईश्वर का तरीका थोड़ा अलग है, वो अक्सर पहले मांगते हैं फिर देते हैं।
हाँ, ये बात भी है।
जैसे कृष्ण ने सुदामा से वो मुट्ठी भर चावल लिए, राम ने शबरी से बेर मांगे, केवट से नाव खेने को कहा, इसका क्या मतलब है?
हाँ, ये बड़े सुंदर प्रसंग है। यहाँ भाव ये है कि ईश्वर हमारी पात्रता, हमारी देने की नीयत को परखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम कितना दे रहे हैं, बल्कि ये देखते हैं कि किस भाव से दे रहे हैं।
अच्छा, भाव महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। जब हम अपनी श्रद्धा से अपना सर्वश्रेष्ठ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे हमें, समर्पित करते हैं, तब उनकी कृपा कई गुना होकर बरसती है। सुदामा के उन थोड़े से चावलों के बदले क्या मिला, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये जो देना है, यही असल में बोना है।
लेकिन क्या ये विचार कुछ लोगों को थोड़ा डरा नहीं सकता कि भाई पहले देना ही पड़ेगा, क्या पता हमारे पास देने को ज्यादा कुछ हो ही ना?
देखिए, ये सवाल मन में आ सकता है, स्वाभाविक है, पर गुरुदेव का भाव समझना जरूरी है। ईश्वर हमारी तिजोरी नहीं देखते, हमारी नीयत देखते हैं।
अच्छा।
जिसके पास जो भी है, थोड़ा समय है, थोड़ी शारीरिक शक्ति है, अच्छे विचार हैं, किसी के लिए सहानुभूति है या थोड़ा सा धन है, वो उसी को सच्चे मन से दे। शुरुआत छोटी हो सकती है, पर वो समर्पण सच्चा होना चाहिए।
ठीक है, मैं समझी। तो इस बोने का फल क्या मिलता है? क्या सिर्फ बाहरी चीजें जैसे स्वास्थ्य, बुद्धि, पैसा?
बाहरी लाभ तो मिलते ही हैं, जिन्हें गुरुदेव सिद्धियां कहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, तेज बुद्धि, लोगों का सहयोग, जरूरत के मुताबिक संसाधन, ये सब मिलता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं इससे भी बढ़कर मिलती हैं रिद्धियां।
रिद्धियां ये क्या है, सिद्धियों से अलग?
हाँ, ये आंतरिक संपदा है, वो अनमोल खजाने जो शायद बाहर से दिखते नहीं पर जीवन को असली मायने देते हैं।
जैसे कि?
जैसे पहली है आत्मसंतोष, मन की एक गहरी शांति, एक तृप्ति जो शायद दुनिया की सारी दौलत खरीद कर भी ना दे सके। दूसरी है लोक सम्मान और सच्चा जन सहयोग, ये सिर्फ दिखावे की वाहवाही नहीं होती बल्कि लोगों का हृदय से जुड़ना, साथ देना, जैसे गांधी जी को मिला या विनोबा जी को मिला।
और तीसरी?
और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण रिद्धि है दैवी अनुग्रह, यानी ईश्वर का वो अदृश्य मार्गदर्शन, वो सहायता जो हर मुश्किल में, हर उलझन में रास्ता दिखाती है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि उन्हें ये सब रिद्धि और सिद्धि दोनों भरपूर मिली।
और क्या ये सिद्धांत सिर्फ उनके जैसे महापुरुषों के लिए ही काम करता है या हम जैसे सामान्य लोगों के लिए भी ये उतना ही सच है?
नहीं नहीं, गुरुदेव इस बात पर बहुत जोर देते थे। वो कहते थे कि ये नियम सार्वभौमिक है, सबके लिए समान है। जैसे सूरज की रोशनी अमीर, गरीब, छोटे बड़े सब पर बराबर पड़ती है, वैसे ही ईश्वर के ये आध्यात्मिक नियम भी हर उस व्यक्ति के लिए काम करते हैं जो इन्हें अपने जीवन में उतारता है। ये कोई रहस्यमयी साधना नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक सच्चा तरीका है।
तो मतलब सार यही निकलता है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार ईश्वर के काम में या कह ले समाज के भलाई में अपने संसाधनों का, चाहे वो समय हो, श्रम हो, बुद्धि, भावना या धन, इनका निवेश करना कभी घाटे का सौदा नहीं है बल्कि ये तो अनंत गुना लाभ देने वाला सौदा है। और ये लाभ सिर्फ बाहरी सफलता तक सीमित नहीं बल्कि असली दौलत यानी मन की शांति और संतोष भी लाता है।
बिल्कुल सही कहा, और ये विचार सचमुच हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन के इन अनमोल संसाधनों को कहां लगा रहे हैं। क्या हम उन्हें सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में अपने निजी स्वार्थ के लिए सहेज कर रख रहे हैं, या हम उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए, परमार्थ के लिए बोने का साहस कर पा रहे हैं? इस गहरे विश्वास के साथ कि जो बोया जाता है वो लौट कर जरूर आता है और अक्सर कई गुना होकर आता है, शायद इसी प्रश्न के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देना उचित होगा।